Welcome to the General
आपको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के महासहायक संस्था के सभा में. हम सम्मेलन केंद्र जो सॉल्ट लेक सिटी यूटा में इकट्ठा हुए हैं और बाहर के कई संतों स्थानों पर. प्रधान थॉमस एस मॉन्सन जो इस सम्मेलन का नेतृत्व करता है उसने कहा है कि मैं संचालन करूं. मेरा नाम लिंडा के पर्टन सहायक संस्था महाप्रधान हूँ. हम आभारी हैं हुए हैं अपने प्रिय भविष्यवक्ता प्रधान थॉमस एस मॉन्सन और उनके सलाहकार प्रधान हेनरी बिंग आयरिंग और प्रधान डेटर एफ उत्तर से जो आज रात हमारे साथ हैं. हम एल्डर नील एल एंडरसन भारा की परिषद एल्डर पॉल बी पाइपर जो 70 के और बिशप गैरी स्टीवन जो बिशप की अध्यक्षता है के भी स्वागत करते हैं. मेरे सलाहकारों कैरल एम स्टीवंस और लिंडा एस रीव भी मंच पर बैठे हैं. हम अपना प्यार और आभार प्रकट करते हैं जवान महिलाओं और प्राथमिक की महाअध्यक्षताओं को साथ में सहायक संस्था के जनरल बोर्ड के सदस्यों को भी जो हमारे समक्ष मौजूद है. हम अपनी शुभकामनाएं उन सभी को भी अर्पित करते हैं जो टीवी सैटेलाइट इंटरनेट और जो अन्य साधनों से भाग ले रहे हैं. इस सभा के संगीत एक जवान अविवाहित बालिक महिलाओं के गायक मंडली जो सॉल्ट लेक बॉनविल सॉल्ट लेक हॉलिडे और मुरे यूटा जवान युवाओं के स्टेक से क्षेत्र से है द्वारा प्रदान किए जाएगा और एमिली वाडली से निर्देशन में साथ में ऑर्गन पर होंगी. गायक मंडली और सभा अब इस सम्मेलन को लेट अस ऑल प्रेस ऑन का कर शुरुआत करेगी. उसके बाद प्रार्थना मरिया लुइस टोरेस द्वारा दी जाएगी. हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम बहुत बहुत आभारी हैं आज इकट्ठा के लिए, हमारे महासहायक संस्था के लिए, हमारे इतने अच्छे अवसर के लिए. हम आभारी हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए जो सब इन बातों को बहनों द्वारा सुन सकते हैं पूरे संसार में. हम आभारी हैं हमारे अब भविष्यवक्ता थॉमस एस मॉन्सन और उनके सलाहकारों के लिए और हमारे 70 और एल्डर्स और अपोस्टलों के लिए जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को होने के लिए काम किया है. हम बहुत आभारी हैं उनके त्यागों के लिए और उनके लिए आशीष मांगते हैं. हम अब बहुत आभारी हैं हमारे नए रिलीफ सोसाइटी के प्रेसिडेंसी के लिए, सिस्टर स्टीवन, सिस्टर सब सिस्टरों के लिए. और हम उन्हें उनके लिए आशीष मांगते हैं कि वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं. हम ये प्रार्थना करते हैं हम हमारे प्रिय मसीहा के नाम में, जीसस क्राइस्ट, आमीन.
थैंक यू फॉर दैट.
इस प्रेरित यीशु भजन और प्रार्थना के लिए धन्यवाद. अब मैं बहुत आभारी हूँ तुमसे भाषण देने के. मेरे टिप्पणियों के बाद गायक मंडली हमारे लिए ही सेंट हिज सन और आई एम ट्राइंग टू बी लाइक जीसस संगीत पेश करेंगी. बहन कैरोली एम स्टीवंस जो सहायक संस्था महाअध्यक्षा की पहली सलाहकार है फिर हमसे बातें करेंगी. उनकी टिप्पणियों के बाद हमारी बहन लिंडा एसरी जो सहायक संस्था महाअध्यक्षता की दूसरी सलाहकार है. गायक मंडली और सभा अब गाएगी आई स्टैंड ऑल अमेज्ड.
मेरे प्यारे बहनों, तुम मेरे दिल और दिमाग में कई महीनों से जब से मैंने इस चुनौती भरे जिम्मेदारी को लिया. मैं अपने आप को इस जिम्मेदारी के लिए काबिल नहीं समझती, लेकिन मैं जानती हूँ कि नियुक्ति प्रभु के चुने हुए भविष्यवक्ता से मिली है और अभी के लिए इतना काफी है. धर्मशास्त्र सिखलाते हैं, चाहे प्रभु की जुबान से या उनके सेवकाओं की जुबान से, एक ही बात है. एक अनमोल उपहार है कि इस नियुक्ति के जुड़ी से स्वर्ग के पिता अपने सभी पुत्रियों से प्यार करते हैं. तुम्हारी तरह मैं धर्मशास्त्र से प्यार करती हूँ. जरमाया के शहर धर्मशास्त्र में हम उस धर्मशास्त्र को पाते हैं जो मेरे दिल में बहुत करीब है. जरमाया मुश्किल और समय के और स्थान के समय पर था, मगर प्रभु ने उसे आज्ञा दी थी कि इज़राइल के अंतिम दिन की आशा की शान पहले ही दिखा. उन दिनों के बाद प्रभु ने कहा, मैं अपने नियम को उनके भीतर भाग में डालूंगा और उनके हृदय में लिखूंगा और उनके परमेश्वर होंगे और वे मेरे होंगे. मैं उनके बुराइयों को भूल जाऊंगा और मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा. हम वह लोग हैं जिन्हें जरमाया ने देखा. क्या हमने प्रभु को अपने दिल में नियम, यह धर्म सिद्धांत को लिखने के लिए आमंत्रित किया है? क्या हम विश्वास करते हैं इसमें? कुछ साल पहले एल्डर जेफरी आर हॉलैंड ने पुरजवाजों के दृढ़ विश्वास को जो उसने महसूस किया था के बारे में बतलाया, जिसने सॉल्ट लेक वैली के ओर दिखेला और उसके बच्चों के मृत्यु के बाद में हुआ. उसने कहा, उन्होंने किया था क्योंकि उनके आत्मा के अंदर यीशु मसीह के सुसमाचार का विश्वास था. वह उनके खून में था. उन्होंने शांति से बतलाया, वह ही एक तरीका है उन मताओं के लिए को ब्रेड बॉक्स में दफनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बतलाते हुए वादा किया हुआ धरती वाला कहीं पर है. हम वैली तक पहुंचेंगे. उसने अंत में इस प्रभावित चुनाव के शब्दों से कहा, अगर हम अपने परिवारों और गिरजाओं में कर सकें, शायद और बहुत कुछ भी उनके देखभाल करने को शुरुआत है. मुझे बताया गया है कि उतना सही था. उसी तरह जैसे हमारे पूर्वजों को चुनना था कि वे क्या ले सकते हैं, शायद 21st सेंचुरी में हमें सोचना भी मजबूर है. हम इसमें कितना रख सकते हैं? यह दूसरे तरीके में यह वह है जो हमारे दिल में है सकता है. एक नई सहायक संस्था अध्यक्षता की तरह हमने प्रभु से गंभीरता से जानने की कोशिश की है कि वह हमारे सहायक संस्था पर किया जरूरी बोझ डालेंगे और उसके कार्य को आगे बढ़ाएंगे. हमने महसूस किया है कि स्वर्ग के पिता पहले हमें उसे उसके प्यारे बहनों को उस यीशु मसीह के प्रायश्चित करने की क्रिया धर्म दृष्टांत को समझाने में मदद करेंगे. दूसरी, जब हम परिवारों को और घरों की जरूरत को मजबूत करने के लिए फैसला किया है, हमने महसूस किया है कि प्रभु हमें उसके प्यारी पुत्रियों और खुशी से उनके वादों के निभाने में मदद की है। अंत में हम महसूस करते हैं कि वह हम दूसरे अधिकारियों और हमारे पुरोहिती नेताओं के साथ कार्य करने, ढूंढने और उनकी मदद करने करेंगे जो आगे बढ़ाने की चाहते हैं। यह हमारी जरूरी प्रार्थना है कि हम में इस कोई अपने दिल को खोलेंगे। हम किस तरह परिवारों को मजबूत करने की दूसरी या दूसरों को मदद करने की आशा कर सकते हैं जब तक हम अपने पहले दिलों में यीशु मसीह और उसके गहरी और दृढ़ विश्वास नहीं कर सकते। ये मेरी आशा है आज रात कि इन तीन सिद्धांतों में समझने से हम सब आशीर्वाद प्राप्त करें, चाहे हम गिरजाघर में नए हैं या जीवन भर के सदस्य हों। सिद्धांत एक, जो कुछ भी जीवन में सही नहीं है यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा सही हो सकता है। हम तुम्हारे साथ यीशु मसीह की प्रायश्चित की गवाही हो बयां करते हैं। हमारे गवाहियों तुम्हारी तरह हमारे हृदय में लिखे हुए हैं, जो हमने आत्मा आबादी और चुनौतियों और दुर्भाग्य के साथ झेला है हमारे बढ़ांती के रुकने में। हम सभी जीवन के साथ मुसीबतों के का सामना करते हैं, मगर विश्वासी दिलों में हमें लिखा हुआ है, सभी जो कुछ जीवन में सही नहीं है यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा सही हो सकता है। क्यों प्रभु हमारे जीवन में झेलने और दुर्भाग्य को आने देता है? सरलता से, यह हमारे बढ़ती और आगे बढ़ने के लिए योजना का भाग है। हम खुशी से चिल्लाए कि हम यहाँ दुनिया में आ सके। एल्डर डैलन अचोक्स ने सिखाया कि हमारे जरूरी बदलाव ज्यादातर झेलने और दुर्भाग्य से मिलती है, ना कि दया और शांति से। एक विश्वासी पूर्वज बहन की उदाहरण ये सच बतलाती है। मैरी लुइस वॉकर 17 साल की थी। जॉन टी मॉरिस से उसने शादी की। उन्होंने 1853 में संतों के साथ मैदान के पास से गुजर रहा था अपने पहले और सॉल्ट लेक वैली में उसके बाद आए। उनके सफर पर उन दूसरे संतों के विश्वंत जरूरों की को झेला था, मगर उनके झेलना और दुर्भाग्य वाला सॉल्ट लेक वैली को पहुंचने तक खत्म नहीं हुए। दूसरे साल मैरी 19 साल की थी। उसने कहा, हमें एक लड़का हुआ था। एक शाम जब वो 2 या 3 साल का था, कुछ चीज ने मुझे धीरे से बतलाया, तुम उस छोटे से बच्चे को खो दोगे। धन के समय बच्चे की तबीयत खराब हुई। हमने सब कुछ किया लेकिन वह उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई और तब वह मर गया और मैंने अपनी बच्चे की बिछड़ने का गम झेला। लेकिन उसकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी, उसका पति भी मर गया। मैरी ने लिखा, मुझ पर भी अभी जवानी की 20 साल दिनों के छोटे से आबादी के एक अजनान धरती पर मैं परिवार के से मिलो दूर और सामने पहाड़ जैसी मुसीबतें और मैं भी नहीं आशा किया है मर जाऊं और अपने प्यारे लोगों के साथ रहूं। मैरी ने आगे बोली, मैं एक दिन अपने दोस्त के साथ चल रही थी और मैं अपने पति का सोच रही थी जब मैंने देखा कि मैंने आगे क्या करना था। मुझ पर एक बड़ी उदासी छा गई कि दुश्मन जानता है कि हमला कब करना है, मगर हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह बचाने में महान है। उस पिता के मदद से मैंने सभी मुश्किलों को झेला जो उस समय मुझे मुश्किल लगे। मैरी ने 19 साल के कम ने जान लिया कि प्रायश्चित हमें वह शांति देती है जो कुछ भी इस जीवन में आसान नहीं दे सकती। सिद्धांत तो, प्रायश्चित में ऐसी शक्ति है कि वह प्राकृत आदमी और औरत को यीशु मसीह के सच्चे चेला बना सकते हैं। यह एक तरीका है जो हमें मदद करता है जानने में और हमें जब हम सिखा सकते हैं जब हम जानते तब हम जान सकते हैं यह जब है जब हम सिखा सकते हैं। एक महान सिद्धांत के प्रायश्चित शायद यह हमें अपने बच्चों, नाता पितरों और दूसरे जातियों के दोस्तों के लिए सिखला सकते हैं। एक औरत रास्ते पर चल रही थी जो बहुत गहरी गड्ढे में गिर गई और फिर वह गिर पड़ी और वह बाहर न निकल सकी, अपने आप नहीं निकल सकती थी। वह औरत ने मदद के लिए पुकारा और खुशी हुई जब उसे दिखलाया कि दयालु के गुजरते हुए सुना और सिद्दीक को गड्ढे में डाला। हम उस औरत की तरह हैं जो गड्ढे में हैं। पाप करना गड्ढे में गिरने के समान है और हम अपने आप बाहर नहीं निकल सकते। उसी तरह जैसे उस गुजरते हुए औरत ने की मदद को सुना था, स्वर्ग के पिता ने अपने एक लौते पुत्र भेजा इसके लिए। मगर उद्धारका के सिद्धि के ज्यादा करता है, वह गड्ढे में जाकर और हमें मदद करता है उसके द्वारा बाहर निकलने के लिए। उसी तरह जैसे उस औरत को सिद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा था बाहर निकलने के लिए, हमें भी अपने पापियों और से पश्चाताप करना चाहिए और सुसमाचार के धर्म सिद्धांतों और धर्म विधि को मानना चाहिए हमारे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए और प्रायश्चित के कार्य को हमारे जीवन करना चाहिए। मुझे मौका मिला कि मैं नए दिन के पूर्वाज को मिलूं चिले में। प्रायश्चित की शक्ति से वह अपने बीते हुए दिन को भूल सकी और बहुत कोशिश कर रही है अपने यीशु मसीह के सच्चे सेवक बनने जैसे। एल्डर बेर्ना ने कहा, यह एक चीज जानने है कि यीशु मसीह धरती हमारे लिए मरने के लिए है। यह मसीह के लिए धर्म सिद्धांत के लिए है, मगर हमें भी धन्यवाद देना चाहिए इसके लिए कि उसके प्रायश्चित और पवित्र आत्मा की शक्ति से जीवित रहे हैं, ना कि सिर्फ हम मार्गदर्शन दें मगर शक्ति भी दें। जब यह चिलेन बहन ने और मैं आनंद जीवन पर चलने वाले रास्ते पर वार्तालाप कर रहे हैं, उसने जोश से मुझे बताया कि वह जानती थी कि वह उसी रास्ते पे थी। वह प्रायश्चित की शक्ति उसके अंदर जाग रही थी, यह उसके हृदय में लिखा जा चुका था। वह शक्ति सिर्फ हमें गड्ढे से बाहर निकाल नहीं सकती, नहीं देती, सीधा और सकरा रास्ता पर चलने कर स्वर्ग की शक्ति के पास वापस जाने में। सिद्धांत 3, प्रायश्चित ही पिता के प्यार का सबसे बड़ी साबुत है अपने बच्चों के लिए। हमारे लिए यह अच्छा होगा, हम एल्डर ओक्स की सोच के बारे में सोचे कि स्वर्ग के पिता को कितना कष्ट होगा अपने पुत्र को हमारे पापियों के लिए झेलने के लिए। यह सबसे साबुत है उसकी प्यार के हम सब के लिए। उस प्यार का महान कार्य हम सबको हमारे घुटने पर विनम्रता से प्रार्थना कराती हुए हमारे स्वर्ग के पिता को हम सबको इतना प्यार करने के लिए कि उसने अपने इकलौते और सही पुत्र को हमारे पापियों, हमारे सिर के पिरा और हम सभी जो हमारे हर एक विज्ञता जीवन में सही नहीं। एल्डर उक्टॉस ने कहा, एक हमिला महिला जो कई सालों के मुसीबतों से गुजरी थी आंसुओं से कहा, मैंने यह जाना है कि मैं एक 20 रुपए की नोट हूँ, सिलतवार फटी मेली, लेकिन फिर भी मैं एक 20 रुपए की नोट हूँ, मेरी कुछ कीमत है, 20 रुपए की कीमत है। यह महिला जानती है कि वह स्वर्ग के पिता की प्यारी पुत्री है और वह उसके लिए लायक थी। उसने अपने पिता को अकेले ये जागर की सभी बहनों को जानना चाहिए कि महिला जानती है कि वह परमेश्वर की प्यारी पुत्री है। किस तरह हमारे कीमत उसके जाने के बाद दूसरों की देखरेख की चाहत में बदलाव है, किस तरह हमारी कीमत उसके जाने के बाद हमारे चाहत हो मदद के लिए बढ़ाती उनके लिए जो प्रायश्चित को समझने की जरूरत चाहती है, जिस तरह हम क्यों नीचे गिराए, वह हमें अपने सच्चे छेलों की जानेगा। हेवनली फादर, आज्ञा करते हैं कि यीशु मसीह के प्रायश्चित महान बदलाव के साथ हमारे हृदय में एक आ सकता है। जब हम धर्म सिद्धांत को लग जागते हैं जो परमेश्वर के देवदूत होने हैं, राजा बेंजामिन ने कहा, जो उन्होंने महानता के प्रार्थना की था कि प्रायश्चित उनके जीवनों में कहा, वे एक स्वर में चिल्लाएंगे और तैयार हैं वादों को निभाने के लिए। हर चीज में वादों को बनाना, निभाना और उसमें खुश रहना की साबुत जीसस क्राइस्ट के प्रायश्चित को अपने हमारे दिल में लिखें। जो कुछ भी जो ये तीन सिद्धांतों को रहो, जो कुछ भी जीवन में गलत है वो जीसस क्राइस्ट के इस प्रायश्चित को ठीक हो सकता है। प्रायश्चित ही हमारे लिए सबसे महान साबुत है पिता के प्यार का उसके बच्चों के लिए, और यह प्रायश्चित में शक्ति है जो हमें प्रतीक आदमी और औरत बनने से बचा सकती है और यीशु मसीह के सच्चे चेला बन सकते हैं। मैं हम सबको आमंत्रित करती हूँ कि प्रभु से पूछे कि प्रायश्चित की धर्म सिद्धांतों को हमारे हृदय में लिखें। मैं गवाही देती हूँ कि यह सच्ची है, यीशु के से नाम में, आमीन।
सहायक संस्था महाअध्यक्षता में नियुक्ति पाने के बाद मुझे इच्छा हुई मुझसे पहले इस पवित्र नियुक्ति में सेवा प्रदान किए महिलाओं के बारे में जानने के। मैं बहन जीना डायंता हंटिंगटन यंग की शिक्षाओं से प्रभावित हुई जिसने दूसरी सहायक संस्था महाअध्यक्षता में प्रथम सलाहकार की जगह सेवा की थी। उसने कहा, बहनों हमें हमारे धार्मिक कर्तव्य में पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। मैंने इन शब्दों पर सावधान और कर्तव्य और धर्मशास्त्रों में से कुछ ढूंढा। नए नियम में पॉल ने अपने दिनों के संतों को सिखाया, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की गाड़ी और पहुंची है। अब हमारा उद्धार निकटता है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। रोशनी की कवच को पहन लो। मॉर्मन धर्मशास्त्र में आलमा ने अपने लोगों को परमेश्वर के साथ वादा किए हुओं के धार्मिक कर्तव्यों को सिखलाया था। और जबकि तुम परमेश्वर के दाल में आना चाहते हो और उसके लोग कहलाने चाहते हो और तुम एक दूसरे के बोझ को ढोने में सहायता देना चाहते हो कि जिससे वो हल्का हो जाए और जो दुख से रोते हैं उनके दुख से दुखी होने को तैयार हो, उन जिनको संतरों की आवश्यकता है उन्हें आश्वासन देने चाहते हो और सदैव सभी बातों में चाहे जहां भी तुम हो मृत्यु तक परमेश्वर की साक्षी के रूप में खड़े होने चाहते हो। और अब मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारे हृदयों की यही इच्छा है तब एक गवाह के रूप में तुमने उसके साथ अनुबंध किया है कि तुम उसकी सेवा करोगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे जिससे कि वो तुम्हारे ऊपर अपनी आत्मा को और अधिक उंधेल सके। और जब लोगों ने इन शब्दों को सुना तब तालियां पीटी और हुए अपने प्रसन्नता प्रकट की और कहा, हमारे हृदयों की यही इच्छा है। बहन यंग की बातें और ये धर्मशास्त्रों ने मुझे हमारे आज से कर्तव्य पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं हम एक वादा करते हैं। एल्डर रॉबर्ट डी हेल्स ने सिखलाया, जब हम आज्ञाओं को बनाते और देखरेख करते हम दुनिया को पीछा छोड़ते हैं और परमेश्वर के राज्य में दाखिल होते हैं। हम बदल गए हैं, हम अलग दिखते हैं और अलग व्यवहार करते हैं। जिन बातों को हम सुनते और पढ़ते और कहते हैं सब अलग हैं और जो हमारा पहनावा अलग है क्योंकि हम परमेश्वर की पुतियां और जो हो जाते हैं वादे से उनसे जुड़े हुए। जब हमारी पुष्टिकरण होता है हम पवित्र आत्मा के उपहार को हासिल करते हैं। ईश्वरत्व के एक सदस्य के लगातार प्रभाव का अधिकार हमें राह दिखाने सहानुभूति देने और हमारी रक्षा करने के लिए। जब हमें बहकावा मिलता है वादों से मुकरने के और दुनिया में वापस जाने का वो हमें चेतावनी देता है। प्रधान पॉइंट के पैकर सिखलाता है कि हम में से भी कभी एक गंभीर गलती नहीं करेगा बगैर पहला पवित्र आत्मा से चेतावनी हासिल किए। इस उपहार को हासिल करने के लिए और हमेशा आत्मा के संत के लिए हमें अपने हृदय के हालात को जांचने के लिए योग्य और सावधान रहना चाहिए। क्या हमारा हृदय नर्म है? क्या हमारे पास विनम्रता ज्ञान पाने की इच्छा रखने वाला हृदय कोमल हृदय है या क्या हमारे हृदय धीरे धीरे खड़े हो गए हैं जो जब हम आत्मा की कोमल चेतावनी से मुकर गए थे। शायद हमारे कान खुले थे मगर हमने दुनिया के शोर को सुन लिया और धीमी छोटी आवाज को नहीं महसूस किया। जब हमने बैप्टिज्म लिया था हमारे हृदय परमेश्वर के प्रति बदल गए और सावधान हो गए थे। हम हमारे मार्शल यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ते हमें लगातार खुद से पूछना चाहिए, अगर मैंने हृदय परिवर्तन का अनुभव तुम्हें है क्या इस समय भी ये इच्छा रखती हूँ। कई शुरुआत के संतों ने अपने हृदयों में महान परिवर्तन अनुभव किया। इससे उन्होंने मंदिर के आशीर्वाद प्राप्त किए ताकि उन्हें शक्ति मिले अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। शुरुआत के संतों ने नावों में हर दिन और रात तक मंदिर में रहे धर्म विधियों को पाने और अन्य वादों को करने के यूटा की यात्रा पर निकलने से पहले। सेरा रिच नोवू की एक सहायक संस्था बहन ने कहा, हमें कई आशीर्वाद मिले प्रभु के घर में जिससे हमें आनंद और सहानुभूति मिला जब हमने दुख अनुभव किया और उसे हमने परमेश्वर में विश्वास रखा। ये जानकारी के साथ कि वो हमें अनजाने जगह तक के सफर में राह दिखलाएगा जो हमें शुरू करने वाले थे। उद्धारकर्ता में विश्वास के जरिए बदले हुए हृदय और उनके परिश्रम की मजबूत और काबिल करने वाली शक्ति के जरिए वो जानते थे, अपने हृदयों के गहराई में जानते और समझते थे कि एक उद्धारकर्ता जो उनके निजी तकलीफ को समझता है, क्योंकि उसने उनके लिए गेतसेमनी के बगीचे में संघर्ष किया था। उसने उनके डर, शक, पीड़ा और अकेलापन को महसूस किया है। उसने उनके दुख, कष्ट, भूख, थकान और नुकसान को झेला था, और क्योंकि उसने ये सब झेला है, वो उनसे कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो आए, उन्होंने भविष्यवक्ता में भरोसा किया और उनकी आज्ञा मानी। वो जानते थे कि सफर लंबा होगा, कर्तव्य पूरा करना मुश्किल। वो जानते थे कि बलिदान की जरूरत होगी, पर उनके विश्वास के से मजबूत किए हुए और वादों का पालन करते हुए वो आत्मिक रूप से तैयार थे। नौवू छोड़ने से पहले संतों के एक दल ने मंदिर के इकट्ठा होने वाले कमरे के दीवार पर एक संदेश लिखा। उसमें लिखा था, प्रभु ने हमारे बलिदान को देखा है, हमें हमारे उद्धारों पर चलो। हाल ही में मैंने अपने वार्ड के जवान पुरुष और जवान महिलाओं के साथ एक प्रवर्तक के मार्ग पर चलने में भाग लिया। हर सुबह मैंने खुद से पूछा, मेरा बलिदान क्या है, मैं कैसी उनकी तरह बन पाऊंगी। चलने के दूसरे दिन हमने अपने हाथ गाड़ियों को 12.9 किलोमीटर खींच लिया था और 6.5 मील जो 10.5 किलोमीटर की दूरी बाकी थी जब एक जगह पहुंचे। पहरे के नीचे पहुंचते ही पुरुषों और महिलाओं को अलग कर दिया, आदमियों को आगे भेजा गया। जब हमने हाथ गाड़ियों को ऊपर खींचनी शुरू की, मैंने ऊपर आदमियों को और देखा, जवान और बुढ़े हमारे पुरोहिती मार्गों को दोनों ओर खड़े थे, महिलाओं के सामान में टोपियां निकालकर। मार्ग शुरुआत में आसान थी, मगर कुछ ही देर में हम गहरी रेत में थे और पहाड़ खड़ा होता गया। मैं सिर नीचे किए पूरी ताकत से खींच रही थी और किसी ने मेरी सहायता दी। वो लेक्सी थी, हमारा एक जवान महिला और मेरी पड़ोसन। उसने अपनी हाथ गाड़ी ऊपर पहुंचा दी थी और हमारी जरूरत देखकर हमारे पास दौड़ी। हमने ऊपर जाने के लिए संघर्ष किया और अपने हाथ गाड़ी रख दिया। मैं लौटकर आने अन्य महिलाओं की मदद करने चाहती थी, मगर मेरी सांस फूल रही थी और मेरे मन में ये दिल का दौरा की बात सूझी। मैं आभारी से देखती रही जैसे अन्य जवान महिलाएं अपने हाथ गाड़ी रखकर औरों की मदद करने दौड़ी। जब सब लोग ऊपर पहुंच चुके थे, हमने कुछ मिनट लिए जिसमें हमने जर्नल में लिखा। मैंने शाहरुख से अच्छी तरह से ये तैयारी नहीं की थी, मेरे पीछे आने वालों की मदद नहीं कर पाई, शायद मुझे एक और हाथ गाड़ी नहीं खींचनी पड़े, मगर मैं कभी अपने बहनों को धार्मिक रूप से निराश नहीं करना चाहती, कभी नहीं। वो एक पवित्र अनुभव था जिससे मैंने अपने परिवार और औरों के कर्तव्य की सावधान हुई। सफर पर आगे बढ़ते हुए मैंने अपनी सीख पर विचार किया और सोचा कैसे उसे अमल में लाऊं। पहले मैंने बहनों के बारे में सोचा, वो जिन्होंने हाथ गाड़ी खींच ली है और जो अब भी अकेली खींच रही है। लगभग 23% महिलाएं हाथ गाड़ी दल की बिना सहारा की थी, जो कुछ ने शादी नहीं की थी, अन्य अकेली माताएं थी या विधवा, और कुछ शादीशुदा थी मगर अपने पति से कुछ दिन से लिए बिछड़ गए थे। उन सब ने एक साथ खींचना वादे किए हुए। पुत्रियां जवानों और बुढ़िया जवानों ने भी परिश्रम किया था, जिन्होंने अपने जवान की विभिन्न प्रशिक्षकों में एक ही मार्ग पर एक ही लक्ष्य के साथ। मैंने प्रभु के शब्दों के बारे में सोचा, उसने कहा कि वो हमारे आगे जाएगा, कि वो हमारे दाएं और बाएं और रहेगा, और उसकी आत्मा हमारे हृदय में होगी और उसके देवदूत हमारे इर्द गिर्द हमें संभालने के लिए। दोनों मार्ग के और विश्वासी आज्ञाकारी वादा रखने वाले पुरुष खड़े थे। उनकी पुरोहिती की शक्ति थी, वो शक्ति जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, ने हमें प्रेरित किया, मजबूत किया और सहारा दिया। उन्हें देखने से हमें याद किया कि हम कभी अकेले नहीं, हम इस शक्ति को हमेशा अपने साथ रखते हैं जब हम वादों के प्रति आज्ञाकारी रहे। मैंने उन पुरुषों के बारे में सोचा जो सफर के दौरान अपने परिवारों से किसी कारण अलग हो गए थे, उन्हें हाथ गाड़ी अकेले खींचने के लिए छोड़कर। कुछ पहले के दलों में गए थे सॉल्ट लेक नगर में अपने परिवारों के लिए तैयारी करने। कुछ सफर के दौरान मैं मर गए थे। उनकी अन्य पुरुष अपनी इच्छा से वहां नहीं थे क्योंकि वो वादों के प्रति आज्ञाकारी नहीं थे। उनकी तरह जो पहले गए थे अब आज भी कई लोग ऐसी आशीर्वादों परिश्तियों में हैं। हम आशीर्वादी होने के बारे में सिखलाते रहते और जीते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि लगातार कोशिश करने से हम मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे और भविष्य में वादा किए आशीर्वादों के मौकों को पाएंगे। जब हमारे एक पास जीवन में मुश्किलें थी और रहेंगी, ये मरणशील जीवन परीक्षा का समय है और हमें अपना चुनाव करने के मौका मिलते रहेंगे कि हम आने वाले मुश्किलों से क्या सीखेंगे। परमेश्वर की पुत्री होने के नाते हम विश्वास के मार्ग पर चलते रहेंगे क्योंकि प्रधान मॉनसन के सीख को हम पहचानते हैं। मंदिर में हासिल किए मुक्ति के धर्म विधियां जो हमें किसी दिन स्वर्ग के पिता के पास एक अनंत परिवार संबंध में लौटने और उपहार से आशीर्वाद और शक्ति पाने और हर बलिदान और हर कोशिश के लायक है। सिर्फ मार्ग पर होना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहना और विश्वास में भरते रहना है। जब हम प्रायश्चित के सहानुभूति देने, मजबूत करने, योग्य बनाने और चंगे करने वाली शक्ति को पाना चाहते हैं। मेरे प्रिय बहनों, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं बहुत बहनों को निजी रूप से नहीं जानती, मगर मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। हम उनके राज्य में वादा निभाने वाली पुतियां हैं और अपने वादों द्वारा ऊपर से शक्ति पाई हैं। हम कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हैं। सहायक संस्था महिलाओं को अनंत जीवन के आशीर्वाद के लिए तैयार करती है। हमें धार्मिक रूप से सावधान करती है, विश्वास और निजी धार्मिकता को बढ़ाकर। हम अपने आप से शुरू करें। हम जहाँ हैं वहाँ से शुरू करें। हम आज शुरू करें। जब हम धार्मिक तौर से सावधान रहते हैं, हम बेहतर तौर से परिवारों और घरों को मजबूत करेंगे और औरों की सहायता करेंगे। ये मुक्ति का कार्य है और प्रायश्चित का मजबूत करने और योग्य बनाने की शक्ति उसे मुमकिन करती है। पूरी तरह से समझो तुम कौन हो। हमारे धार्मिक कर्तव्य में सावधान रहो। हम अपने स्वर्ग के पिता की पुत्रियां हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं। इसकी नाम में गवाही देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
As we meet sisters around the world, we are amazed at the strength of your testimonies. So many of you are first or second generation members of the church. We see many sisters serving in multiple callings, traveling long distances to attend church, and sacrificing to make and keep sacred temple covenants. We honor you. You are the Lord's modern day pioneers. Recently, my husband Mel and I met a volunteer tour guide as we visited a museum in Australia, Molly Lenthal. A lovely woman in her 70s, we found out that Molly has no children and has never married. She's an only child, and her parents have been deceased for many years. Her closest relatives are two cousins who live on another continent. Suddenly,
Achanak. मैं आत्मा के गवाही के वश में हुई जैसे स्वर्ग के पिता बात कर रहे हो। मौली अकेली नहीं है, मौली मेरी पुत्री है। मैं उसका पिता हूँ। वो मेरे परिवार में बहुत आवश्यक पुत्री है। वो कभी अकेली नहीं होती। उद्धारकर्ता के जीवन में से मेरी पसंद कहानी लाजरत की है। धर्मशास्त्र हमें बतलाते हैं कि यीशु मसीह उसकी बहन मैरी और उनके भाई लाजरस से प्रेम करते थे। यीशु को खबर मिला कि लाजरस बहुत बीमार है, मगर यीशु तुरंत नहीं आया। वो दो दिन और रहा कहते हुए कि ये बीमारी परमेश्वर के की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यह सुनकर कि यीशु आ रहा है, मार्था उसे भेंट करने गई उसे बताने के लिए क्या हुआ। लाजरस को कब्रा में रखे 4 दिन हो चुके थे। शोक मनाती हुई मार्था घर दौड़ी मैरी को बतलाने के लिए कि प्रभु आए हैं। दुखित मैरी यीशु के पास दौड़ी, उसके पाँव पर गिरी और रोने लगी। हमें बतलाया गया है कि जब यीशु ने मैरी को रोते देखा, वो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उनसे कहा, प्रभु चल कर देख ले। इसके बाद हमने धर्मशास्त्र के सबसे दयालु प्यारे शब्द पढ़े, यीशु रो पड़ा। देवदूत जेम्स ई टैलमेज ने लिखा, वो दोनों दुखित महिलाएं ने जो यीशु ने उनके साथ दुखित कर दिया, इसलिए वो आत्मा में उदास हुआ और घबराया। ये अनुभव हमारे उद्धारकर्ता, हमारे स्वर्ग के पिता के दया, समानुभूति और प्रेम की गवाही देता है जो हमारे प्रति महसूस करते हैं और हर समय हम पर दुख, पाप, दुर्भाग्य और जीवन के पीड़ाओं से दुख होता है। प्रिय बहनों, हमारे स्वर्ग के पिता और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमें जानते हैं और प्रेम करते हैं। वो जानते हैं हम जब पीड़ित होते या कष्ट उठाते हैं किसी तरह। वो सिर्फ ये नहीं कहते, ये ठीक है कि अभी पीड़ा हो रही है क्योंकि जल्द ही सब अच्छा हो जाएगा, तुम चगाई को पालोगे, यह तुम्हारे पति की नौकरियों में मिल जाएगी, यह तुम्हारा भटका हुआ बेटा वापस आ जाएगा। वो हमारे कष्ट की गहराई को महसूस करते हैं और हम उनके प्रेम और दया को अपने कष्ट के समय। एर्मा ने गवाही दी और वो इस जगत पर कई प्रकार की पीड़ा, दुख और बहकावों को झेलेंगे और ये इस कारण होगा कि ये कहना सत्य सिद्ध हो कि वो अपने लोगों की पीड़ा और रोगों को अपने ऊपर ले लेगा और वो मानव शरीर के अनुसार उनकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लेगा, जिससे कि उसका प्याला दया और से भर उठेगा और जिससे वो मानव शरीर के दुर्बलताओं के अनुसार अपने लोगों की सहायता कर सके। जब हम सोचते हैं कि अगर उद्धारकर्ता और हमारा स्वर्ग के पिता हमें जानते हैं या नहीं, निजी तौर से कितनी अच्छी तरह जानते हैं, हमें ओलिवर काउड्री के कहा उद्धारकर्ताओं के शब्द याद करना चाहिए। अगर तुम्हें गवाह की जरूरत है, अपने मन में उस रात को याद करो जब तुम दिल ही में मुझसे प्रार्थना किए थे कि तुम इन बातों को सच्चाई जान सको। इससे पहले उद्धारकर्ता ने कहा, वह परमेश्वर की सेवा कोई नहीं जानता तुम्हारे ख्याल और तुम्हारे इरादों को। उद्धारकर्ता ने ओलिवर को याद दिलाया कि वो निवेदों का प्रार्थना की हर छोटी शब्द को जानता है और याद रखता है। कई साल पहले मेरा पति एक नए योग से बहुत बीमार हो गया। जैसे हफ्ते बीते गए और वो बीमार होता गया, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वो मरने वाला था। मैंने किसी के को अपने घबराहट के बारे में नहीं बताया। हमारे पास एक बड़ा नन्हा परिवार था और एक प्यारा अनंत विवाह और अपने पति को खोने और खुद बच्चों को पालने की सोचकर मैंने अकेली, दुखित और क्रोधित महसूस करने लगी। मुझे शर्मिंदगी है कि मैं अपने स्वर्ग के पिता से दूर चली गई। कितने दिनों तक मैंने प्रार्थना नहीं किया, योजना बनाना छोड़ दिया। मैं रोई, फिर मुझे याद आया कि मैं यह अकेली नहीं कर सकती। कई दिनों में पहली बार मैं घुटनों पर हुई और अपना हृदय की बात स्वर्ग के पिता को बताया। माफी मांगी उनसे दूर जाने के लिए। उसे अपने गहरे एहसास को बताया और फिर कहा कि अगर ये वो है, यही है वो जो चाहते हैं, मैं वही करूंगी। मैं जानती थी उसके पास हमारे जीवन का एक योजना होगा। मैं अपने घुटनों पर प्रार्थना करती रही कि मुझे सबसे मीठा, सबसे शांतिपूर्ण, प्रेम से भरा एहसास हुआ। ऐसा लगा था कि उनके प्रेम का कंबल मुझे ढाक रहा है। ऐसा लगता था कि मुझे स्वर्ग के पिता की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं यही जानना चाहता था। मैंने निश्चय किया कि कभी से भी उनसे दूर नहीं जाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता और आश्चर्यपूर्वक मेरा पति ठीक हो गया। वर्षों बाद मैं और मेरा पति हमारे 17 वर्षीय पुत्री के पास घुटने पर और उसके जीवन की विनती की। इस बार जवाब था नहीं, मगर उसी प्रकार की प्रेम और शांति का वो एहसास जो उद्धारकर्ता ने वादा किया था उतना ही शक्तिशाली था। और हम जानते थे कि भले ही स्वर्ग के पिता उसे वापस घर बुला रहे थे, सब कुछ ठीक होगा। हम जान गए थे प्रभु पर अपना बोझ डालना किसे कहते हैं, जानना कि वो हमें जानता है, प्रेम करते हैं और हमारे दुख और पीड़ा के लिए दया महसूस करते हैं। सबसे मीठा मॉर्मन धर्मशास्त्र के पिता पुत्र का चयन एल्मा के बेटे की गवाही है उसके बेटे हिलमन के लिए। एल्मा ने अपने भय के बारे में कहा जो उसने महसूस किया परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपने सभी पापों के को कहने से पहले। 3 दिन और रात अपने सभी पापों के पीड़ा को महसूस करने के बाद उसने पश्चाताप की और उद्धारकर्ता से दया की विनती की। उसने फिर हिलमन से अपने आप पापों का के भोज के पीड़ा को नहीं याद रखने के से उत्तम और मीठा आनंद के बारे में बताया। परमेश्वर ने आसान से समक्ष आने के भय को महसूस करने की जगह एल्मा ने परमेश्वर को अपने आसान पर देखा, एक दृष्टि में और घोषणा की, मेरी आत्मा वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठी। क्या हम भी ऐसा महसूस करते हैं मेरी प्यारी बहनों, जो हम पश्चाताप करते हैं और प्रेम, दया और आभार के बारे में विचार करते जो हमारे स्वर्ग के पिता और उद्धारकर्ता के लिए महसूस करते हैं, कि हम भी वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठे उनके प्यार भरे बाहों में जाने के लिए? जैसे प्रभु ने मुझे गवाही दी है कि उसने अपने बहुमूल्य पुत्री मौली लंथल को नहीं भूला है, मैं गवाही देती हूँ कि उसने तुम्हें भुलाया नहीं। जो भी पाप या कमजोरी या पीड़ा है तुम्हारी, जो भी परीक्षा या कष्ट में तुम हो, वो तुम्हें जानता है और उन पालों को समझता है। वो तुमसे प्रेम करता है और वो तुम्हें उन पलों में मदद करेगा जैसे उसने मैरी और मार्था के साथ किया। उसने प्रेषित द्वारा हमारे कष्ट को अनुभव किया है ताकि वो जान सके कैसे तुम्हें सहायता कर सकते। अपने भोज को उसे दो। अपने स्वर्ग के पिता को बतलाओ तुम कैसे महसूस करते हो। उसे पीड़ा और दुखों के बारे में बताओ। हर दिन धर्मशास्त्र पढ़ो, उसमें भी तुम्हें ज्यादा शांति और सहायता मिलेगी। हमारे उद्धारकर्ता ने पूछा, क्या कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूलकर अपने गर्भ से जाने शिशु से ममता रहित हो सकती है? हाँ, वो तो भूल दे, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैंने तुम्हारा चित्र अपने हाथों पर के हथेली पर छोड़ के बनाया है। मैंने किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं दी है, परंतु मैंने तुम्हें अपने पास आने के लिए आज्ञा दी है, जिससे कि तुम मुझे अपने हाथों से स्पर्श करो और देखो। इसी तरह का व्यवहार तुम जाग से करना। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें खुद से महसूस करना और देखना है, स्वर्ग के पिता से सभी बच्चों को मदद करने हैं, महसूस करने और देखने के लिए। अपने ऊपर सिर्फ हमारे पाप नहीं, पीड़ा और कष्टों और दुख को के लिए, ताकि हमारे उद्धारकर्ता जाने हम कैसा महसूस करते हैं और हमें सहानुभूति दे। मैं गवाही देती हूँ उनकी यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
हम गायक मंडली और उन सब को धन्यवाद देते इसमें भाग लेने के लिए और इस खास सभा की तैयारी के लिए उनको आभार प्रकट करते हैं। हम सबको अपना प्यार और आभार प्रकट करते हैं इस शाम को हमारे साथ बिताने के लिए। अब हम प्रधान हेनरी बी आयरिंग को सुनकर आशीर्वाद पाएंगे, जो प्रथम अध्याशक्ता के पहले सलाहकार है। उसके टिप्पणियों के बाद गायक मंडली गाएगी आई नीड दी एवरी आवर। उसके बाद मेलिंडा बालो द्वारा प्रार्थना दी जाएगी जो महासहायक संस्था बोर्ड में सेवा करती है प्रधान आयरिंग।
आज रात मैं आभारी हूँ आपके संगत के लिए। यीशु मसीह के गिरजाघर की महिलाएं आगे बढ़ती रही हैं वैसी महिलाएं बनने के लिए जो भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के माँ ने कहा था। इन शब्दों में हमें एक दूसरे से प्रेम से पेश आना, एक दूसरे की देखभाल करना, संपत्ति देना और शिक्षण प्राप्त करना चाहिए ताकि हम सब स्वर्ग में साथ बैठ सकें। इस विचारने योग्य काबिलियत की विवरण के तीन भाग है जैसे परमेश्वर के साथ शांति के माहौल में जा सकते। एक है एक दूसरे की देखभाल करना, दूसरा है कि एक दूसरे को सिखलाना और सेक पाना, और तीसरा है परमेश्वर के साथ बैठ पाना। आज रात मेरे लक्ष्य है तुम्हें परमेश्वर की स्वीकृति और प्रशासन को महसूस करने में मदद करना, उन चीज़ों के लिए जो तुम्हें कर लिया है एक दूसरे को उस ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। एक और दूसरा लक्ष्य का विवरण जो मेरे पास है आज रात वो है वो सब कुछ को आपके संगीत सेवा में अपने बाकी है। उन बहनों के तरह जो पहले के समय में रहती थी तुम्हें भी प्रभु के पुकार पर दूसरों को सहायता पहुंचाने गया है। 1856 में भविष्यवक्ता ब्रिगम यंग ने संतों से कहा कि वो हाथगाड़ी प्रवर्तकों को पास जाया जो बर्फ के पहाड़ों में फंसे हैं। जरूरत के उस समय पर उसने महासम्मेलन में सदस्य से कहा, तुम विश्वास धर्म और धर्म की घोषणा कभी किसी एक आत्मा को परमेश्वर के राय में नहीं बचा पाएंगे जब तक कि तुम हम इन विधियों को ना कर लो जो मैं सिखलाने वाला हूँ। जाओ और उन लोगों को लाओ जो अब उस समतल क्षेत्र में है और उन बातों पर गौर करो जिसे हम सांसारिक कहते हैं। इसके बिना तुम्हारा विश्वास खोला है। यूटा के कई सौ महिलाएं आगे बढ़ी। भले ही वो गरीब थे, उन्होंने अपने गरियों को बचे कुचे सामानों से बाहर और दूसरे से भी इकट्ठा किया मुसीबत में फंसे लोगों के लिए। उसमें से एक आज्ञाकारी बहन ने लिखा, मैं कभी इतना चैन नहीं महसूस किया और मैं ये कहूँ अपने जीवन में किसी अन्य परेशान में भी जितना एकता से समय महसूस हुआ था। जब बचाने का कार्य खत्म हुआ और बर्फ पिघल गया था, उसे बहन ने अपने विश्वासी हृदय का सवाल लिखा, इसके बाद अच्छाई करने वाले हाथ क्या कर सकते हैं। हमारे समय में पूरे धरती के बहादुर बहनों के दलों ने अपने विश्वास को कर्मों में बदल दिया है कई जगहों पर, और वो अपने हृदयों और प्रार्थनाओं में पूछते हैं यही कि सेवा अपने सेवा के जीवन के भविष्य के बारे में। तुम में से हर एक अपने आनंद जीवन का सफर में एक अलग स्थान पर हो। कुछ के पास कई सालों का अनुभव है और इन अन्य लोगों भी अपना मनुष्य चलापन शुरू किया है। हर एक का अलग है अपने निजी इतिहास में और अपने चुनौतियों में, मगर तुम सब बहने हो और तुम्हारे स्वर्ग के पिता के प्रिय पुत्रियां आप सबको जानता है और देखभाल करता है। वो एक चीज को तुम्हें बढ़िया ढंग से एक साथ किया है, वो है प्रेम करना, देखभाल करना और सहानुभूति देने के दूसरे को। मैं उस तीन तरफे चमत्कार का गवाह हूँ। कुछ ही दिनों पहले के बहन के सेवा के दौरान उसके पिता होने के नाते मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर को जिसने एक बेहद शिक्षक को राह दिखाया। हमारे पुत्र एलिजाबेथ जो दूसरे स्टेट में समय स्टेट और समय में रहते हैं, हमसे अपने घर पर थी अपने 3 वर्ष की पुत्र के साथ। उसके एक और बच्चा किंडरगार्टन के पहले हफ्ते में था। एलिजाबेथ जहाँ 6 महीने की गर्भवती थी, अपने तीसरे बच्चे का इंतजार कर रही थी, जो डॉक्टरों ने कहा कि एक लड़की है। उसका पति जोशुआ बाहर काम करता था। जब उसने देखा कि खून बहने लगी है और बहाव अधिक था, उसने अपनी पत्नी से समर किया। उसने उसे बतलाया कि वो एक एम्बुलेंस का बुलाओ और कि वो खुद उसे अस्पताल में मिलेगा, जो 25 मिनटों की दूरी पर था। इससे पहले कि वो फोन रखे, उसे दरवाजा पर खटखटाहट सुनी। दरवाजे पर उसने अपने सहायक संस्था ब्लेंट शिक्षक करने वाला साथी को पाया। उनका कोई योजना नहीं था मिलने की का उसे उस सुबह। उसकी साथी को एहसास हुआ कि उसे इसे मिलने जाना चाहिए। उसने एलिजाबेथ को गाड़ी में बिठाया, जो जोशुआ का अस्पताल पहुंचने से कुछ मिनटों पहले वहां पहुंची। डॉक्टरों ने 20 मिनटों के कम समय में तय किया कि बच्चे को ऑपरेशन द्वारा निकाल कर एलिजाबेथ को बचाया गया। वास्तव में एक छोटा सा लड़की दुनिया में आया, जोर से रोते 15 हफ्ते से, और सच्ची था। उसका वजन था 1 पाउंड 11 औंस, मगर वो जिंदा थी और एलिजाबेथ भी। लूसी मैक स्मिथ के शब्द उस दिन परिपूर्ण हुए थे। सहायक संस्था की एक विश्वासी सदस्य पर पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित हुई ने परमेश्वर के राज्य में देखभाल किया, प्रेम दिखाया और अपने बहन को सहानुभूति दिया। वो और कई हजार अन्य लोग जिन्हें यह प्रेरित सेवा दी गई है, पीढ़ियों से के पास सिर्फ मदद किया गया लोगों और उनके प्रियजनों के लिए धन्यवाद नहीं, मगर प्रभु के लिए। तुम्हें उनके प्रार्थना के शब्द याद है, उनके लिए जो दुनिया में कम सम्मान पाता है। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों को साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। मगर एक सहायक संस्था बहन का समय पर आने का चमत्कार दुगना हो जाता है। एकता में जुड़ शक्तिशाली बहनों की संस्था द्वारा ये एलिजाबेथ और जोशुआ को भेजे गए उनके बिशप के द्वारा। सहायक संस्था प्रधान ने सब कुछ काबू में कर लिया है। हम एक योजना बनाने में व्यस्त है जिससे कोई तुम्हारे घर पर बच्चों के साथ मदद कर सकते, ताकि एलिजाबेथ अस्पताल आ जा सके जब तक हाल में जन्म बच्चा वहाँ है। हमने पहले भी ऐसी सहायता दी है कई दिनों तक, और हमारे लोग ऐसे मौके के लिए तैयार रहते हैं। हमने तो अस्पताल भी आया है और बच्चों के साथ खेलने वाले कमरे में बैठे हैं, जब माताएं उन्हें कहीं छोड़ना पसंद नहीं करती। हम अभी अपनी योजना पर अमल नहीं करेंगे तुम्हारे बातचीत और स्वीकृति के बिना। सिर्फ आपको बतलाना चाहते थे कि चिंता मत करना कि सब कुछ हम कैसे करेंगे। उन्होंने जो मेरे पुत्री के लिए किया, उसे वो अपने छोटी सी पुत्री के साथ वो पहले जान बिता पाया जब उसने उसे पहले बाहर उठाया। और फिर उसने इस संदेश से समाप्त किया, जो बहनें एक दूसरे को भेजती है दुनिया भर में एक दूसरे की सेवा करने के लिए स्वामी के खातिर विश्वास रखो। निजी परिस्थितियों और पिछले अनुभव में तुम्हारे भिन्नता के साथ मैं तुम्हें कुछ बतला सकता हूँ जब तुम धर्म के प्रति विश्वास रखोगे, तुम अपने आप को हर पल प्रभु द्वारा आमंत्रित पाओगे किसी जरूरतमंद की सेवा करने के लिए, जब वो कार्य मजेदार नहीं देखेंगे और शायद नामुमकिन भी। जब बुलावा आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हारी जरूरत ही है या कि कोई और वो सहायता दे सकता है। याद रखो कि अब जब प्रभु हमें किसी मुसीबत में फंसे इंसान से मिलाते हैं, हम अच्छे समर्थन के समान करते हैं। वो दूसरी ओर नहीं गया, पहले भले ही पिता हुआ रास्ते पर पड़ा, यात्री के आज न बीता और शायद एक दुश्मन भी उसे जो बन पड़ा उसने किया। वो एक खास योजना बनाया, उसने ऐसा किया क्योंकि वो समझ गया था कि मदद करने का मतलब एक इंसान का काम से ज्यादा हो सकता है। अच्छे समर्थन के कहानी के पद तुम्हें भविष्य की योजना में मदद करेगा। वो पद तुम्हारे अपने बच्चों पर हाल ही के अनुभव में उपलब्ध है। सिर्फ एक बार और शायद अक्षर तुम्हें अचंभे में हुए होंगे जब तुम्हें कोई जरूरतमंद मिला होगा। इसे एक बहन, एक बच्चा, एक भाई जो बीमारी या अक्षमता के शिकार थे, तुम्हारे दिया एक एहसास ज्यादा था एक दुर्भाग्य के बिना जीवन की इंसान इच्छा के मिलान में। अच्छे समर्थन के धर्मशास्त्र की कहानी ये कि यात्री के तरह ये मुमकिन है कि वो जो मदद चाहिए तुम्हारे अनुमान के ज्यादा दिनों का हो, जो तुम अकेले नहीं दे सकते। बिशप हमेशा परिवार सदस्यों को आमंत्रित करते हैं एक दूसरे का मदद करने के लिए। की जरूरत होती है इस कार्य के लिए कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है ज्यादा लोगों का अपने प्रेम को बढ़ाने के मौका देना जो एक दूसरे की सेवा से मिलता है। तुम्हें उस आशीर्वाद को देखा और महसूस किया है जब भी तुम्हें किसी की सेवा की है, भले एक छोटे समय के लिए या तुम्हें सेवा किया हुए उसे व्यक्ति के लिए प्रेम महसूस किया है। क्योंकि हम मानव जाता है, प्रेम में ये बढ़ती शायद गुस्सा और थकान से एहसास से रुकावट पैदा करे। ये एक और कारण है कि प्रभु हमें औरों के सहायता लेने देते हैं जब हमें औरों की सेवा कर रहे होते हैं। इसलिए प्रभु ने देखभाल करने वालों के संस्थाएं बनाई है। कुछ हफ्ते पहले मैं एक प्रभु भोज सभा में उपस्थित था जब एक जवान महिला खड़ी हुई बेंच सेक्शन के सहकारी के पर में समर्थित होने के लिए। मैं सोचा रहा था कि क्या वो जानती थी प्रभु ने उसे कितना प्रश्न दिया, ताकि क्योंकि खो देकर उसने उस महिला की बच्चियों हो रो रही थी। इसलिए उस सभा में से जल्द घर जाना पड़ा और मैं उसे नहीं बतला पाया प्रभु कितना खुश और प्रशंसा महसूस करेगा औरों के प्रति और उनके प्रति उसकी सहायता, विश्वास और बलिदान के लिए। उनकी प्रार्थना के एक सबूत है कि परमेश्वर तुम्हें उनकी मदद करने की कार्य देता है। ऐसे जरूरतमंदी की सेवा करने से और तुम्हें उनका प्रेम से व्यक्ति के लिए महसूस करा सकते हैं और तुम्हारे लिए भी। वही है कारण है तुम क्यों किसी की मृत्यु पर रोते हो जिसके तुम्हें लंबे समय तक सेवा करके है। सेवा करने के मौका खोना उसने जुड़ा होने से बड़ा दुख ला सकता है। मैंने हाल में मैं एक महिला को सुना जिस सप्ताह उसका पति मरा था। भले ही लोगों को लंबे समय और प्रेम भरा सेवा प्रदान करने से आशीष मिलते हैं, तुम्हें सीखना है कि उसे शारीरिक बहुत और धन संबंधी रुकावटें होती है सब मुमकिन करने के लिए। और जब ऐसा होता है, सेवा प्राप्त करने वाले को जरूरतमंदी बढ़ सकती है। मूमन धर्म शास्त्रों के शब्दों में अपने पापों को क्षमा करवाने के को उचित रखने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने अवस्था अनुसार गरीबों को अपनी वस्तुओं को दो, जैसे भूखा को भोजन देना, नंगे को वस्त्र देना, रोगियों को देखना जाना और उनकी आत्मिक और शारीरिक संतावना के लिए उनकी आवश्यकता का अनुसार सहायता पहुंचाना। और देखो, ये सब विवेक और व्यवस्था के अनुसार किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति से तेज गति से दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये भी आवश्यकता है कि मनुष्य परेशान करे जिससे कि वो अपने परेशान का फल पाए। ये सलाह आजमाने में कठिन हो सकता है जब चुनाव तुम्हारे इच्छा पर होता है। तुमने औरों क्यों ही को इन चुनाव में संघर्ष करते देखा है। एक उदाहरण है किसी व्यक्ति की देखभाल करने की कोशिश करने का चुनाव करना, जो जीवन के अंतिम पल जिन रहा हो किसी जगह या घर पर, और तुम थके हो। तुम उदार की योजना के बारे में जो जानते हो, तुम्हारा सहायता कर सकता है। ये एक कारण है कि लूसी मैक स्मिथ ने बुद्धिमानी से कहा कि बहनों को शक्ति शिक्षित होना चाहिए। उसने भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को उदार के जो योजना को मुख्य तत्व सिखाया। इस तरफ जब उन्हें खत्म होने वाले मुसीबतों को समझाने में संघर्ष कर रहा, और फिर प्रभु ने कहा, अगर वो अच्छी तरह से जल रहे, परमेश्वर उसे आनंद करेंगे। वो व्यक्ति जो किसी को खत्म मुसीबतों से गुजरे में मदद रखता है, हमें हमारे सेवा प्रदान करने के लक्ष्य पर गौर करवाता है। हमारा लक्ष्य ही उन्हें दिखाना कि मसीह में विश्वास आजमाना, आनंद जीवन की आशा करना और दया दिखाना, जो मसीह का संपूर्ण प्रेम है। मैंने कई बार राज्य में बहनों को सब ठीक से करते देखा है। उसे समय के बारे में सोचो जब तुम एक कक्षा के बाद सहायक संस्था या प्राथमिक या जवान महिलाओं के कमरे में गए हो, चित्रों को देखो। उदारकर्ता के एक चित्र या उनके शब्दों में नहीं देखेगा, मगर तुम जान सकते हो कि उनकी प्रशिक्षित की वास्तविकता और मोह की गवाही महसूस हुई है कक्षा के उस समय में। परिवार हमेशा साथ रह सकता है, नहीं होगा, मगर तुम बहनों और उनके बच्चों के नुकसान में आशा देख सकते हो। और तुम्हें देखा है जैसे मैंने भी देखा, एक बुद्धिमान बहन शिक्षा कैसे मुसीबत के समय एक बहन की हिम्मत बढ़ती है। महान सहायक संस्था प्रदान तरीके ढूंढ लेती है कि जो देखभाल ज्यादा लोग ज्यादा बोझ देते हैं खुद पर और अपने क्षमता पर शक करने लगते हैं, हम उनके बोझ कम करते हैं। जब उनके कमजोरियों के प्रति धैर्य बढ़ाते हैं, और हम उनकी उदाहरण पर चल सकते हैं, क्योंकि वो जरूरतमंदों का महान पोषण करता है। हम और ज्यादा परमेश्वर के पुत्रियों को देखेंगे अन्य बहनों को संस्था में आमंत्रित करते हुए। हम उन शब्दों को उस भविष्य के दिन में देखेंगे जो लूसी मैक ने तीसरी में देखा था, स्वर्ग में एक साथ बैठेंगे। हम उस दिन की तैयारी एक चंद में नहीं कर सकते, वो दिनों और वर्षों के देखभाल करने से आता है। मेरा प्रार्थना है कि मैं से कई लोग आने वाले विशाल भविष्य में साथ रहेंगे। हम अपने आपसे अपनी गवाही कहता हूँ कि आपकी आशा उन दिनों के लिए पूरा होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप ऊपर प्रस्तुत के द्वारा ये मुमकिन किया है। स्वर्ग की पिता तुम्हारे विश्वास का प्रार्थनाओं का सुनता और उसका जवाब देता है तुम्हारे सेवा में मार्गदर्शन और मदद करने के लिए। पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है और उनके जिनकी तुम देखभाल करते हो भरपूरी हृदय और सीमित शक्ति के साथ। तुम्हें शक्ति मिलेगी और प्रेरणा अपने सेवा प्रदान करने की क्षमता को जानने के लिए। आत्मा तुम्हें सहानुभूति देगा जब तुम सोचेगे कि मेरा काम पर्याप्त। मैं गवाही देता हूँ कि प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा और कि तुम्हारे रास्ते तैयार और मार्ग होगा उनके द्वारा जब तुम्हें उसकी प्रेरणा की जरूरत और मुसीबत के समय उनकी सेवा करोगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम बहुत बहुत आभारी हैं इस सम्मेलन में महसूस और हमारी बहनता की और आपकी आत्मा को महसूस करने के लिए और इन बहुत सारी अच्छी बातों को सुनने के लिए. हमारे प्यारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम बहुत आभारी हैं आपके लिए और आपके बेटे के लिए और उनके अटोनमेंट के लिए. हम पूछते हैं कि आप हमें आशीष दें कि हम सब कुछ अटोनमेंट को समझें और जाने कि हम और कैसे अटोनमेंट में काम करें. हम बहुत भारी हैं हमारे कई आशीषों के लिए. हम जानते हैं कि आपके हाथ हमारे सब बातों में हैं और हम ये सब कहते हैं आपके बेटे के नाम में, यीशु मसीह के नाम में. आमीन.